ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए। गोलीबारी में 2 जवान शहीद, 2 अन्य जवान घायल। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत परसों 11 फरवरी को होगा मतदान। आज रात 12 बजे के बाद थम जाएगा प्रचार अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 10 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुए सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के 4 लोगों की मौत हो गई है। अब समाचार विस्तार से। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए हैं। मारे गए सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। इनमें से एक बालोद जिले के भाटापारा का रहने वाला डीआरजी का हेड कांस्टेबल नरेश ध्रुव और दूसरा जवान एसटीएफ का आरक्षक वासित रावटे है, जो डोंडी बालोद का रहने वाला है। वहीं 2 अन्य जवान घायल हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। घायल जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है।
बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि सुरक्षा बलों को खुफिया सूचना मिली थी कि जिले के नेशनल पार्क के जंगल में बड़ी संख्या में माओवादी मौजूद हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स और बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी।
बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीमें नक्सल विरोधी अभियान कार्रवाई पर निकली हुई थी। इसी दौरान आज सुबह 8 बजे से लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ में AK-47 समेत कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी एवं एसटीएफ के एक एक जवान शहीद हो गए हैं और 2 जवानों को बुलेट इंजरी थी, जिसे चॉपर के द्वारा इवैक्यूएट किया गया है और बेहतर इलाज रायपुर में किया जा रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुरक्षा बल के जवानों की इस सफलता पर उनकी सराहना करते हुए लिखा है कि नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में यह बड़ी सफलता है। वहीं 2 जवानों के शहीद होने पर उन्होंने अपनी भावपूर्ण संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि देश इन वीरों का सदा ऋणी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह संकल्प दोहराया कि अगले साल 31 मार्च से पहले देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कहा कि उनकी सरकार के 13 महीने के कार्यकाल में बस्तर का इलाका गणतंत्र से गणतंत्र की ओर बढ़ रहा है।
मैं डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के जवानों को बहुत बहुत उनके साहस को सलाम करता हूं। 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको भी हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम कह सकते हैं कि ये जो 13 महीने का हमारे शासन का ये कार्यकाल है, ये गणतंत्र से गणतंत्र की ओर जाने वाला है।
समाचार डेस्क, आकाशवाणी रायपुर।
इस बीच नारायणपुर जिले में 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये माओवादी कुतुल एरिया कमेटी के सदस्य बताए जा रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 10 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 36 विद्यार्थियों का चयन विभिन्न स्कूलों से किया गया है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन, स्वयं प्रभा, प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनल और शिक्षा तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालयों के सोशल मीडिया चैनलों पर किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में भी छात्र छात्राओं में उत्साह देखा जा रहा है। भिलाई स्थित शंकराचार्य स्कूल के छात्र कमल भोसले ने प्रधानमंत्री की इस पहल की सराहना की है।
बहुत अच्छी चीज है, हम पिछले 3 साल से इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं, कई इनसे जवाब है, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की है, हमारे पढ़ाई के क्षेत्र में हम बहुत हेल्प मिली है।
वहीं एक अन्य छात्र सुयश कापसे ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हमारा मनोबल बढ़ाता है।
ये बहुत ही अच्छा प्रयास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो उन्होंने ये शुरुआत की है। हम जैसे बच्चों के लिए एवं टीचर्स एवं पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है, जो हमें स्ट्रेस कम करने के लिए नए नए निदान देते हैं एवं हमारा मनोबल बढ़ाते हैं।
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए 3,06,00,000 विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 10 फरवरी को प्रयागराज में महाकुंभ जाएंगी। वे गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगी। राष्ट्रपति अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर के भी दर्शन करेंगी। वे डिजिटल महाकुंभ केंद्र में आधुनिक तकनीक के माध्यम से महाकुंभ की गहनता के बारे में जानकारी लेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति 8 घंटे से अधिक समय तक प्रयागराज में रहेंगी। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेल में आज छत्तीसगढ़ को मॉडर्न पेंटाथलॉन महिला टीम इवेंट में रजत पदक हासिल हुआ है। इस महिला टीम में कबीरधाम की मोनिका साहू, दुर्ग की दिलेश्वरी और इसी जिले की चंद्रकला ओझा ने शूटिंग, दौड़ और तैराकी स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ ने 38वीं राष्ट्रीय खेल में अब तक 5 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक प्राप्त किए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत आज रात 12 बजे के बाद प्रचार अभियान थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार आज रात 10 बजे के बाद चुनाव प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति नहीं रहेगी। हालांकि 10 बजे से 12 बजे के बीच बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रचार किया जा सकता है। इसके बाद सार्वजनिक तौर पर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। रात 12 बजे के बाद चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक सभाएं, जुलूस, नुक्कड़ सभाएं और लाउड स्पीकर का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इससे पहले प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज धमतरी और दुर्ग में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और प्रत्याशियों ने भी आज जनसभाएं कर और रैलियां निकालकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत 11 फरवरी को मतदान होगा। इस बार के चुनाव में मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के जरिए एक साथ महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मतदान करेंगे। ईवीएम के बारे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आकाशवाणी समाचार से चर्चा में ईवीएम से मतदान करने की प्रक्रिया की जानकारी दी।
सबसे पहले ऊपर उसमें महापौर की सूची रहेगी, उसके लिए जो जो कैंडिडेट होंगे और उनको जो भी सिंबल, उनका पार्टी सिंबल या निर्दलीय है तो उनका जो अलॉटेड सिंबल होगा तो उनकी सूची रहेगी, और उसके बाद फिर पार्षद पद के लिए जो अभ्यर्थी होंगे उनकी सूची होगी। और जब मतदाता वहां पर जाएगा मतदान केंद्र में तो उसको पहले महापौर के लिए जिस भी कैंडिडेट को वो वोट देना चाहता है उसके लिए उसको बटन दबाना पड़ेगा, और उसके पश्चात पार्षद के लिए जो अभ्यर्थी हैं उसमें से वो अपनी चॉइस से बटन दबाएगा, तो उसको दोनों पद के लिए, दो वोट के लिए दो बटन दबाना पड़ेगा।
श्रोताओं, राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह से ली गई इस भेंट वार्ता का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 10 फरवरी को सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव के तहत राज्य के विभिन्न नगर निगमों की प्रोफाइल की श्रृंखला की अंतिम कड़ी के रूप में आज हम आपको कोरबा नगर निगम के बारे में बताएंगे।
कोरबा नगर निगम में इस बार 8 महापौर प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने उषा तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। उषा तिवारी ने आकाशवाणी समाचार से चर्चा में बताया कि वे जनहित के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं।
मैं चुनाव लड़ रही हूँ जनहित के जितने मुद्दे, चाहे कोरबा को पॉल्यूशन के लेके हो, चाहे कोरबा के बच्चों को स्पोर्ट्स की सुविधा लेके हो, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, मैं इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हूँ कि सुंदर कोरबा हो, विकसित कोरबा हो, साफ कोरबा हो और स्वच्छ कोरबा हो, ये मेरा मिशन है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से महापौर पद की प्रत्याशी संजू देवी राजपूत ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान वे लोगों की समस्याओं को सुनकर लिखित में अपने पास रख रही हैं। चुनाव जीतने पर वे उनका समाधान करेंगी।
मैं जो समस्याएं जो अभी डोर टू डोर जा रही हूं, प्रचार प्रसार में जा रही हूं, बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जो कि नहीं हो पाई है उसको हम नोट कर रहे हैं, और हम आश्वासन भी अपने जनता को दिला रहे हैं कि मैं 5 वर्षों में ये सारी आपकी समस्याओं को दूर करूंगी।
67 वार्डों वाले कोरबा नगर निगम में कुल मतदाताओं की संख्या 2,67,103 है। इनमें 1,33,400 से अधिक महिला और 1,33,600 से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं। वहीं 23 तृतीय लिंग मतदाता भी शामिल हैं। कोरबा से राशि गुप्ते की रिपोर्ट के साथ समाचार डेस्क आकाशवाणी रायपुर।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुए सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से वापस रायपुर लौट रहे थे। इसी दौरान सोनभद्र जिले के दरनखाड़ के पास उनका चारपहिया वाहन एक ट्रेलर से टकरा गया। बिलासपुर जिले की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के किलिमंजारो पर्वत को फतह कर तिरंगा फहराया है। निशा यादव की इस सफलता पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि निशा की यह उपलब्धि प्रदेश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री ने निशा से बिलासपुर में मुलाकात की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें सहायता के रूप में 3,45,000 रुपए का चेक प्रदान किया था। अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 फरवरी को भूमकाल स्मृति दिवस के अवसर पर आदिवासी जननायक अमर शहीद गुंडाधुर को श्रद्धांजलि अर्पित की और मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से 11 फरवरी तक मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए। गोलीबारी में 2 जवान शहीद, 2 अन्य जवान घायल। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत परसों 11 फरवरी को होगा मतदान। आज रात 12 बजे के बाद थम जाएगा प्रचार अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 10 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुए सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के 4 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।